आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये क्लास 10th के साइंस का 10th चैप्टर है और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया है। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले तो पढ़ा था कि जो हमारे लेंसेज होते हैं उनके फोकस के बारे में हमने कुछ कुछ पढ़ा था, जैसे कि हमने डिस्कस की थी एक्टिविटी 10.11। इसमें हमने बात की थी कि किस तरीके से अगर इन्फिनिटी से कोई लाइट रेज आती हैं लेंस पर पड़ती हैं तो वो लाइट से पास होने के बाद रिफ्रैक्ट होने के बाद में जिस पॉइंट पे कंसंट्रेट होती हैं वो क्या कहलाती है, वो उस लेंस की फोकस पॉइंट कहलाती है। कॉनवेक्स लेंस के केस में ये रियल इमेज ऑब्टेन करके देती है और कॉनकेव लेंस के केस में हमें रियल इमेज नहीं मिलती है, वर्चुअल इमेज मिलती है। तो हमें उसके लिए फोकस जो पॉइंट है उसको देखने के लिए हमें लेंस के अंदर देखना होता है। और क्योंकि लेंस जो है उसके पास दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं तो ऐसे में उसके पास दो फोकस होंगे, फोकस पॉइंट्स होंगे, और दो फोकस पॉइंट्स होने के साथ में उसके पास दो फोकल लेंस भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर यह होगा कि हो सकता है कि वो फोकल लेंस जो हो वो इक्वल हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि उसका जो स्फेरिकल सरफेस है वो किस तरीके का है, उसका कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू का हाफ वैल्यू जो होता है वो फोकल लेंथ होता है। तो जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है अगर वो दोनों स्फेरिकल सर्फेस के लिए अलग अलग वैल्यू रखता है तो उसकी फोकल लेंथ की वैल्यूज भी अलग अलग होंगी। उसके बाद आगे हम लोगों ने बात की थी इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस, जिसमें कि सबसे पहले हमने एक्टिविटी 10.12 के जरिए देखा था कि अलग अलग पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रखने से इमेज किस तरीके से अलग अलग नेचर की बनती है, अलग अलग टाइप की बनती है, पोजीशन उसकी अलग होती है, उसका आकार यानी कि उसका साइज जो होता है वो भी बदलता है। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को वेरी करते हैं वैसे वैसे जो इमेज की पोजीशन है वो भी वेरी करती है। और सबसे पहले हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस के केस में देखा था कि किस तरीके से अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट को रखने से इमेज की अलग अलग जगह पर फॉर्मेशन होती है। अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो दूसरे साइड में एक साइड जिस साइड आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा है उसके ऑपोजिट साइड में इमेज की फॉर्मेशन होगी, लेंस के ऑपोजिट साइड में इमेज की फॉर्मेशन होगी, हाईली डिमिनिश होगी, पॉइंट साइज होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 यानी कि किसी एक साइड लेंस के एक साइड, सपोज करिए कि आप लेंस के लेफ्ट साइड में रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को और वो भी आप उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर के काफ़ी आगे, मतलब कि लेंस से ऐसी दूरी पर रख रहे हैं जो दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू से ज़्यादा है, तो ऐसे में जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो होगी बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन दूसरी साइड में, लेंस के दूसरे साइड में जिस साइड आपने ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड में नहीं होगी इमेज फॉर्मेशन, उसके दूसरे साइड में होगी। और इस बार ये जो इमेज बनेगी ये डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज की नहीं होगी, डिमिनिश्ड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। डिमिनिश्ड का मीनिंग होता है छोटे साइज की होगी, एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इमेज की साइज है वो छोटे साइज की होगी। उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्ट को रेडियस ऑफ कर्वेचर पर ही रख देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस पर ही रख देते हैं यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बेसिकली आप रख रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगी। और इस बार भी मतलब जैसे जिस साइड आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसके दूसरी साइड में इमेज की फॉर्मेशन होगी, और ये जो इमेज की फॉर्मेशन है ये सेम साइज की इमेज बनी है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज बनी है और रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर, कहीं पर भी बिटवीन फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच में कहीं पर भी आप रखते हैं लेंस के एक साइड, तो उसकी इमेज दूसरी साइड, लेंस के दूसरी साइड बियॉन्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगी, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी ज़्यादा दूरी पर इमेज की फॉर्मेशन होगी। और इस बार ये इमेज जो होगी वो एनलार्ज बनेगी यानी कि साइज बड़ा होगा इसका, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। अगर आप फोकस पॉइंट पर रख देते हैं एक किसी लेंस के एक साइड, अगर आप फोकस पॉइंट पर रख देते हैं ऑब्जेक्ट को तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पर बनती है, हाईली एनलार्ज होती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है। हमने देखा था कि सिर्फ एक ही ऐसा केस था जब कॉन्वेक्स लेंस जो है वो एक इरेक्ट और साथ में वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन करके दे रहा था, वो तब जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के कहीं पर भी बीच में रख दें, तो उस केस में हम लोगों को जो इमेज मिलती है वो वर्चुअल मिलती है और इरेक्ट मिलती है, और एनलार्ज तो ये होती ही है। और मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि आप लोगों को जब भी लेंस के केस में देखना है तो अगर जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज बन गई है तो वो वर्चुअल इमेज बनती है, और अगर ऑब्जेक्ट जिस साइड रखा है उसके ऑपोजिट साइड में इमेज बन रही है तो ऐसे में हमेशा इमेज जो है वो रियल बनती है। उसके बाद हमने कॉनकेव लेंस के लिए भी देखा था कि कॉनकेव लेंस में अगर हम इन्फिनिटी पे रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसकी जो इमेज है वो फोकस पॉइंट पे बनती है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट को रखा गया उसी साइड में बन जाती है इमेज भी, और इसीलिए ये जो इमेज है ये वर्चुअल है, इरेक्ट है, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज की बनती है क्योंकि फोकस पॉइंट पर बन रही है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को उसके डिस्टेंस को वेरी करते हैं, इन्फिनिटी से थोड़ा पास लाते हैं और कहीं पर भी अगर हम रखें ऑब्जेक्ट को बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉनकेव लेंस, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। और ये कहाँ बनेगी? ये बनेगी बिटवीन फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर, जिस साइड में ऑब्जेक्ट को रखा गया उसी साइड में बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के कहीं पर भी बीच में बन सकती है। डिमिनिश्ड होगी यानी कि जितने बड़े साइज का ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में इमेज की साइज छोटी होगी। वर्चुअल है क्योंकि आपको इसको देखने के लिए जो आपका लेंस है उसी में देखना पड़ रहा है। इरेक्ट है यानी कि सीधी है, उल्टी नहीं है। उसके बाद हमने रे डायग्राम्स बनाने के कुछ रूल्स पढ़े थे। इसमें पहला रूल ये था कि अगर कभी इंसिडेंट रे जो पड़ रही है हमारे लेंस के ऊपर वो पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरीके से पड़ रही है लेंस के ऊपर, तो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद में ये फोकस पॉइंट से पास करती है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में जिस साइड से ये पहले इंसिडेंट रे पड़ रही है उसके ऑपोजिट साइड वाले फोकस लेंस फोकल पॉइंट पर ये क्रॉस करती है जब ये लेंस से रिफ्रैक्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो अगर कोई इंसिडेंट रे कॉनकेव लेंस के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पड़ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो उसके बाद जब रिफ्रैक्ट हो जाती है वो कॉनकेव लेंस से, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ऐसा अपीयर होता है कि वो फोकस पॉइंट से पास हो रही है। ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि कॉनकेव लेंस में हमें अपीयर होता है कि वो फोकस पॉइंट से पास हो रही है क्योंकि जो कॉनकेव लेंस है वो रियल इमेजेस नहीं बनाता है। उसके बाद अगर हमारी जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल फोकस को क्रॉस करती हुई इंसिडेंट होती है, पड़ती है हमारे लेंस के ऊपर, तो लेंस से पास होने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद, वो प्रिंसिपल फोकस से पैरेलल होकर के रिफ्रैक्ट होती है, और ये दोनों ही केसेस में वैलिड है, कॉनकेव लेंस में भी और कॉन्वेक्स लेंस में भी। बस अंतर ये होता है कि कॉन्वेक्स लेंस में आप देख सकते हैं कि एक साइड से जब ये पड़ रही है तो ये एक लेंस के एक साइड की प्रिंसिपल फोकस को क्रॉस करती हुई इंसिडेंट हो रही है और दूसरे साइड से ये पैरेलल होकर के निकल जा रही है। लेकिन कॉनकेव लेंस के केस में आप देखिए जब ये पड़ रही है तो ये ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो फोकस पॉइंट से क्रॉस हो रही है, पूरा क्रॉस करते हुए नहीं दिखाया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि जब इंसिडेंट लाइट पड़ रही है कॉनकेव लेंस में तो वो ऐसे पड़ती है कि अपीयर होती है कि फोकस पॉइंट से पास हो रही है, फिर उसके बाद रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होकर के ये रिफ्रैक्ट हो जाती है। अगर कभी कोई इंसिडेंट लाइट पड़ती है ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करती हुई तो वो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करती हुई रिफ्रैक्ट भी हो जाती है, वो कोई डेविएशन शो नहीं करती। तो ये थे कुछ रूल्स जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप रे डायग्राम्स बना रहे हैं उस वक्त। तो इस तरीके से हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी, आज हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुछ रे डायग्राम्स की, जिनके बारे में मैंने आपसे कहा था कि आप पढ़ के आ सकते हैं, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगी क्योंकि हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रे डायग्राम्स के रूल्स हम देख चुके हैं, और इसमें आप लोगों को रे डायग्राम्स बुक में दिए गए हैं, आपको बस प्रैक्टिस करना है ताकि एग्जाम में अगर आपसे कोई सा भी सिचुएशन बोला जाए तो आप उसका रे डायग्राम इजिली बना सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 180 पर आप लोगों को कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसके कुछ रे डायग्राम्स दिखाए गए हैं। इसमें आप देखिए ए पार्ट जो आपको दिखाया गया है ये बेसिकली फिगर 10.16 है पेज नंबर 181 पर, और इसके कुछ पार्ट्स जो हैं पेज नंबर 180 पर भी हैं। तो ए पार्ट में आप लोगों को बताया गया है कि जब भी कभी इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, तो उसकी इमेज जो है वो फोकस पॉइंट पे बनती है कॉन्वेक्स लेंस के, और जिस साइड से ऑब्जेक्ट को रखा गया उसके दूसरे साइड में इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर आप देखिए जो पैरेलल लाइंस हमेशा दिखाई जाती हैं वो ये बता रही हैं कि जो लाइट रेज हैं वो कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि सही में सन के जितनी दूरी पर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, सिंपली इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा दूरी है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, तो इसी को इनफाइनाइट डिस्टेंस कहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दूरी पर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज जो होगी वो फोकस पॉइंट पर बनेगी हमारे कॉन्वेक्स लेंस के। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर रख देते हैं, बियॉन्ड का मतलब ये है कि आपने जो दूरी ली है लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में वो दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर की दूरी से ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो लेंस के दूसरे साइड में बिटवीन फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को किस तरीके से इन्वर्टेड इमेज बनी है ये दिखाया जा रहा है। जब आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो सीधी खड़ी है तो उसकी इमेज उल्टी नीचे की तरफ बन गई है, तो इसी को इन्वर्टेड इमेज होना कहते हैं। और रियल इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस साइड ऑब्जेक्ट को रखा है उसके ऑपोजिट साइड में इमेज की फॉर्मेशन हो रही है, और यहाँ पर आप लोगों को कोई डॉटेड लाइन्स से नहीं शो किया गया है, डार्क लाइन्स से शो किया गया है। इससे आपको आसानी से पता चल जाना चाहिए कि जो इमेजेस बन रही हैं ऑब्जेक्ट्स की वो रियल हैं, उसे स्क्रीन पर लिया जा सकता है। और कॉन्वेक्स लेंस की खास बात यही है कि ये रियल इमेजेस बनाता है, जिस तरीके से कॉनकेव मिरर बनाता था रियल इमेजेस, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस भी रियल इमेजेस बनाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बी पार्ट है इसमें आप लोगों को और भी अच्छे से लेबलिंग करके दी गई है, फोकस पॉइंट और लेंस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमेशा सारी ऑप्टिक्स जो है उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए। कॉनकेव मिरर के केस में भी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको स्मॉल यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं और इमेज डिस्टेंस को स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे याद रख लीजिए, आप इसे चेंज नहीं कर सकते कभी भी। तो यहाँ पर बी पार्ट में आप लोगों को दिखाया गया है कि जो ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की दूरी है उसे स्मॉल यू से बोलते हैं और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और लेंस और इमेज के बीच की जो दूरी है वो इमेज डिस्टेंस कहलाती है, स्मॉल वी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप सी पार्ट में देखो, सी पार्ट में दिखाया है कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट को अगर आप लेंस के एक साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो दूसरे साइड जो इमेज है उसकी फॉर्मेशन होगी, और वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगी, और दोनों की साइज सेम है, ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज दोनों की सेम है, और इन्वर्टेड इमेज बनी है, रियल बनी है। अच्छा, आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी इसमें, जब भी हम इमेज की फॉर्मेशन करा रहे हैं तो ए पार्ट को छोड़ करके बाकी सारे जो पार्ट्स बनाए गए हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, उसमें सभी में सिर्फ दो ही रेज पास कराई जाती है, मोस्टली दो ही रेज पास कराई जाती है, उसी से हमारा काम हो जाता है। एक तो हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे पढ़वाते हैं तो वो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से पास करती है, उसके बाद हम दूसरी जो लाइन बना देते हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई बना देते हैं, तो इसी से हमारा सारा काम हो जाता है। और उसके बाद इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं, सिर्फ दो रेज आपको बनानी है जो ऑब्जेक्ट से निकल रही है, दो ही इंसिडेंट रेज आप लेंस पर पढ़वाएंगे, एक तो पैरेलल पढ़वा देंगे प्रिंसिपल एक्सिस के और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करता वो पढ़ा देंगे। जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा होगा वो तो डेविएट ही नहीं होगा, जिस पाथ से आ रहा था उसी पाथ से वो पास हो जाएगा, लेकिन जो पैरेलल पढ़ रहा था वो रिफ्रैक्ट होने के बाद में, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद में फोकस पॉइंट को क्रॉस कर लेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो आप लोगों को रे डायग्राम्स दिए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप डी पार्ट देखो, डी पार्ट में बताया कि अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट और रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट कहीं इसके बीच में रखते हैं तो उससे क्या होता है कि जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो बियॉन्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, उसकी इमेज डिस्टेंस जो होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस से ज्यादा होगी, और ऐसे में जो इमेज बनेगी उसकी साइज ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी होगी, एनलार्ज्ड होगी, और रियल और इन्वर्टेड तो ये अभी भी है ही। अगर फोकस पॉइंट पर ही रख दिया जाता है ऑब्जेक्ट को तो ऐसे में इमेज की फॉर्मेशन जो होगी वो इन्फिनिटी पर होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और हाईली एनलार्ज्ड होगी, बहुत ही बड़े साइज की होगी। उसके बाद एफ पार्ट में आपको बताया गया है कि अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, तो ऐसे में इमेज की फॉर्मेशन जो होती है वो होती है लेंस के अंदर ही, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि बियॉन्ड 2F1 बनी है, तो ये कहीं पर भी बन सकती है, इसको बस आपको ये ध्यान रखना है कि इमेज इस बार वर्चुअल होगी और सीधी होगी, जिस तरीके से इमेज बनी है बिल्कुल वैसे ही बनी है, जैसे ऑब्जेक्ट सीधे खड़ा है तो उसकी इमेज भी सीधे ही बनी है लेकिन वर्चुअल बनी है, इसे आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते, इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लेंस में देखना होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को कॉन्वेक्स लेंस की अलग अलग पोजीशंस पर किस तरीके से साइज चेंज होता हुआ इमेज का फॉर्मेशन होता है जब आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लेंस, तो इमेज की कैसे पोजीशन वेरी करती है, ये सारा दिखाया गया है रे डायग्राम से, और आपको ये सारा आना चाहिए, आपसे बनाने के लिए कहा जाएगा एग्जाम में तो आपको ये आना चाहिए पहले से ही। उसके बाद यहाँ पर कॉनकेव लेंस किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करती है ये भी आप लोगों को दो रे डायग्राम से दिखाया गया है, फिगर 10.17 पेज नंबर 181। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप ऐसा करें कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो विद रिस्पेक्ट टू कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस की अगर देखा जाए तो उसके इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज जो होती है वो फोकस पॉइंट पर बनती है, और इस केस में आप लोगों को जो इमेज देखनी होती है वो इमेज आप देख सकते हैं, जिस साइड आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेंस के उसी साइड में इमेज की फॉर्मेशन भी हुई है, यानी कि ये इमेज जो है ये वर्चुअल इमेज है, इसको देखने के लिए आपको लेंस में ही देखना पड़ेगा, आप इसे स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। एक और खास बात आप लोगों ने नोटिस की होगी वो ये है कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में देखो, जब इसमें फर्स्ट पार्ट देखो, कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन दिखाई उसका फर्स्ट पार्ट का रे डायग्राम देखो, जो ए पार्ट है इसमें देखो, जब पैरेलल रेज पड़ती है कॉन्वेक्स लेंस पर तो कॉन्वेक्स लेंस से दूसरे साइड से पास होने के बाद ये एक पॉइंट पर सारी की सारी इकट्ठा हो जा रही है, इकट्ठा हो जा रही है, इसको बोलने के लिए इंग्लिश में एक वर्ड है कन्वर्ज हो जा रही है, ये कहते हैं हम लोग कि जब पैरेलल रेज लेंस पर पड़ रही है कॉन्वेक्स लेंस पर तो कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद में वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है, फोकस पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है, सारी की सारी इकट्ठा हो जाती है, इस तरीके से ये बनाती है रेज का फॉर्मेशन। लेकिन अब देखो यहाँ पर आप आ जाओ वापस से पेज नंबर 181 पर और फिगर 10.17 का ए पार्ट देखो, इसमें देखो जब पैरेलल रेज पड़ रही है कॉनकेव लेंस पर तो ये इकट्ठा नहीं हो रही है, ये फैल जा रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले जो लाइज जो रेज आई है लेंस के ऊपर पैरेलल पड़ी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पड़ी है और कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस पर ये पड़ रही है, कॉनकेव लेंस से पास होने के बाद में ये फैल जा रही है, ये इकट्ठा नहीं हो रही है, ये फैल जा रही है, तो इस तरीके के लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। जैसे इकट्ठा होने को एक नाम दिया गया था कन्वर्ज होना, वैसे ही फैल जाने को एक नाम दिया गया है, वो नाम है डाइवर्ज होना। तो हमारा जो कॉनकेव लेंस होता है ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है, जब इससे रेज पास होती हैं तो ये उन्हें फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है, और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है जब उससे रेज पास होती है तो वो उन्हें कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर देता है, इकट्ठा कर देता है। तो यहाँ पर क्योंकि कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग नेचर का है इसीलिए इससे पैरेलल रेज पास होने के बाद एक पॉइंट पर इकट्ठी होती हुई अपीयर होती है, एक्चुअल में नहीं वो इकट्ठी हो रही है, जस्ट अपीयर होती है, तो इसीलिए इमेज जो है वो रियल नहीं बनी है, वर्चुअल बनी है, और ये पॉइंट साइज की बनती है, हाईली डिमिनिश्ड बनती है। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज फोकस पॉइंट पर बनती है कॉनकेव लेंस के, और वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, पॉइंट साइज की होती है, हाईली डिमिनिश्ड होती है। उसके बाद बी पार्ट में आपको बताया गया कि अगर आप इंफिनिटी से थोड़ा पास लाते हैं और कहीं पर भी बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर आप कहीं पर भी रखें तो उसकी इमेज जो होगी वो कहाँ पर बनेगी, वो बनेगी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट ऑफ द कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो है हमारा उसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में कहीं पर भी इमेज की फॉर्मेशन हो सकती है, और ये इमेज जो होगी उसी साइड पे बनेगी लेंस की जिस साइड आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इस बार ये इमेज जो है ये पॉइंट साइज की नहीं बनेगी, थोड़ा सा साइज इसका बढ़ जाएगा, आपको अच्छे से इमेज दिखने लगेगी, लेकिन अभी भी ये डिमिनिश्ड कहला रही है। डिमिनिश्ड इसलिए कहला रही है क्योंकि एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इसका साइज जो है इमेज का ये छोटा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये इमेज जो बनी है इरेक्ट बनी है और ये वर्चुअल बनी है और डिमिनिश्ड है, छोटे साइज की है, तो ये कॉनकेव लेंस किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करती है ये भी आप लोगों को आ गया, और इसे भी आपको याद कर लेना है, इसमें से भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हमें बात करनी है अबाउट साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। जिस तरीके से हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में देखा था, स्फेरिकल मिरर्स में देखा था कि कुछ साइन कन्वेंशन हमें फॉलो करनी होती है जब हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कुछ वैल्यूज जो है उन्हें ऑब्टेन करने के लिए जब हमें वैल्यूज डालनी होती है फॉर्मूला में तो हमें कुछ साइन कन्वेंशन फॉलो करनी होती है। जैसे मैंने आप लोगों ने मिरर के केस में बताया था, यहाँ पर भी जो लेंसेज हैं उनके केस में भी कुछ कन्वेंशन फॉलो करनी होती है। जैसे कि जो फोकल लेंथ है, जब भी आप कभी कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ लिखेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के साथ लिखेंगे, अगर कॉनकेव लेंस के लिए लिखेंगे तो वो आप हमेशा नेगेटिव वैल्यू के साथ लिखेंगे। ये लिखने के पीछे भी कारण है, कारण ये है कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, तो इसीलिए हम लोग उसका फोकल लेंथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। इसी तरीके से जो कॉनकेव लेंस है उसका फोकल लेंथ हमेशा हम नेगेटिव लिखते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो लेंस फॉर्मूला जो है वो क्या है, 1/v - 1/u = 1/f, ये लेंस फॉर्मूला है, इसको रट लो अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इस पर, तो इसको रट लो, इस फॉर्मूले को रट लो, और इसमें इसको अप्लाई कैसे करना है वो हम लोग बात करेंगे अभी। तो 1/v - 1/u = 1/f, इसमें जो v है ये क्या है, v है इमेज डिस्टेंस, स्मॉल u जो है ये है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, स्मॉल f जो है ये फोकल लेंथ है। अब जैसे हम लोगों ने मिरर के केस में देखा था कि 1/v + 1/u = 1/f था मिरर के केस में, लेकिन लेंस के केस में क्या है, 1/v - 1/u = 1/f। तो जैसे हमने मिरर के केस में वैल्यू डालते वक्त साइन कन्वेंशन फॉलो किया था कि नेगेटिव वैल्यू डालनी है इमेज डिस्टेंस की कि पॉजिटिव वैल्यू डालनी है, ये सारा देख के ही हमने उसमें फॉर्मूले में डाला था। तो वैसे यहाँ पर भी हम लोगों को जब फॉर्मूले में डालना होता है वैल्यू, तो बहुत सारा ध्यान रख करके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है। जैसे स्फेरिकल मिरर्स के केस में आपने जो भी डिस्टेंसेस मेजर किए थे वो आपने पोल से ऑब्जेक्ट तक या फिर पोल से इमेज तक, इस तरीके से आपने ट्रैवल करते हुए जो डिस्टेंसेस है वो मेजर किए थे। यहाँ पर पोल नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर है, तो आपको ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की दूरी नापनी होती है या फिर ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की दूरी नापनी होती है। तो आपको यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से मूव करना होता है, जैसे आप मिरर्स के केस में पोल पॉइंट जो है उससे मूव कर रहे थे, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से बेसिकली आपको मूव करना है। यहाँ पर जो आप लोगों को मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला है वो है m, स्मॉल m से यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को h डैश से बता रहे हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो h से बताया जा रहा है। तो इस तरीके से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ये तो सेम है, ये हमारे मिरर्स में भी ऐसे ही था, लेकिन मिरर्स के केस में एक और फॉर्मूला था आपको याद होगा, -v/u। सिमिलरली यहाँ पर भी एक और फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं लगता है, यहाँ पर होता है फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का v/u। v जो स्मॉल v है वो है इमेज डिस्टेंस, u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और यहाँ पर भी सारी बातें अप्लाई होती हैं, जैसे कि अगर मैग्निफिकेशन में आपकी इमेज जो बनी है अगर वो रियल बनी है तो मैग्निफिकेशन की नेगेटिव वैल्यू लेंगे, अगर वर्चुअल इमेज बनी है तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो इस तरीके से सारी बातें अप्लाई होती हैं। और इसमें भी जब आप लोगों को वैल्यू पुट करनी होती है v और u की, तो आप लोगों को साइन कन्वेंशन का ध्यान रख करके ही वैल्यू पुट करनी होती है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूले पढ़ लिए, अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। पहला एग्जांपल 10.3 देखेंगे जो पेज नंबर 182 पर है। इसका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि आपको बताया गया है फोकल लेंथ की वैल्यू ऑफ अ कॉनकेव लेंस जो कि 15 सेंटीमीटर है। अब फोकल लेंथ जो आप लोग लिखेंगे, जो आप लोग फॉर्मूले में डालेंगे, तो आप लिखेंगे -15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है, अगर कॉन्वेक्स लेंस होता तो +15 सेंटीमीटर लिखते, तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है हमेशा। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि आपको बताना है बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपको इमेज डिस्टेंस गिवन है। तो आप देखो यहाँ पर आप लोगों को रे डायग्राम्स का क्यों बताया गया था, रे डायग्राम्स के बारे में क्यों बताया गया था, इसलिए बताया था क्योंकि आप लोगों को उसकी नॉलेज होनी जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज की फॉर्मेशन होती है कॉनकेव लेंस के केस में, और कॉन्वेक्स लेंस के केस में जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसके अपोजिट साइड में होती है इमेज की फॉर्मेशन। इन इन्फॉर्मेशन की नॉलेज आपको जरूरी है, क्योंकि तभी आप लोग साइन कन्वेंशन फॉलो कर पाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को मिरर्स के केस में बताया था कि आप लोगों को बेसिकली क्या देखना होता है, आप लोगों को इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देखनी होती है कि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है, ये आपको ध्यान में रखना होता है। उसके बाद आपको ये देखना होता है कि जब आप लोगों को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस मेजर करना है तो उसके लिए आप लोगों को किस तरीके से मूवमेंट करना हो रहा है, राइट टू लेफ्ट मूव करना पड़ रहा है या लेफ्ट टू राइट मूव करना पड़ रहा है। तो अगर आप लोगों को मूवमेंट करते वक्त, डिस्टेंस मेजर करने के लिए मूवमेंट करते वक्त, इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करते वक्त, मूवमेंट करते वक्त अगर आप डायरेक्शन आपकी मूवमेंट की ऑपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ऐसे में आप जो डिस्टेंस की वैल्यू है उसे नेगेटिव लेते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में आप ट्रैवल कर ले हैं वाइल मेजरिंग इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिस डायरेक्शन में आप मूवमेंट कर रहे हैं वो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट सेम है एज दैट ऑफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, तो ऐसे में आप जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसको आप पॉजिटिव वैल्यू दे देते हैं। सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है। यहाँ पर आप देखो, या तो मैं आपको बताती हूँ, आप लोग चाहो तो रट भी सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या रटना है। आपका कॉनकेव लेंस जो होगा वो हमेशा जब भी कभी उसके ऑब्जेक्ट जो रखा होगा वो हमेशा, मान लो किसी भी एक साइड रखा होगा उसी साइड में उसकी इमेज की फॉर्मेशन भी होगी। तो ऐसे में आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको दोनों की ही वैल्यू को नेगेटिव लेकर के चलना है। ये नेगेटिव वैल्यू आपको सिर्फ तभी लेनी होती है जब आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन हो. न्यूमेरिकल वैल्यू से आप नंबर वंबर कोई आपको दिए गए हो, 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंसेस की आपको न्यूमेरिकल वैल्यू अगर गिवन हो तभी आप लोग उसका साइन कन्वेंशन लेंगे. अगर आपको खुद फाइंड आउट करना है कि उसकी वैल्यू क्या है तो उस केस में आप लोग पहले से साइन लेकर के नहीं चलते हैं. साइन आपको फॉर्मूला यूज करने के बाद खुद ही मिल जाता है. तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, आपको जब फॉर्मूला यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, तो उसमें जब आप साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे कि कौन सा साइन देना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, कौन सा साइन देना है इमेज डिस्टेंस को, तो अगर आपसे बोला ही यह है कि आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करिए, तो आप पहले से अज्यूम करके नहीं चलेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा. उसको आपको कुछ नहीं उसके बारे में सोचना है. जो चीजें आपको गिवन है उनके बारे में आपको केवल सोचना है. आपको फोकल लेंथ गिवन है तो फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव लेंगे ये आपको सोचना पड़ेगा. आप लोगों को इमेज डिस्टेंस गिवन है तो आपको सोचना पड़ेगा कि इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें. तो अगर कॉनकेव लेंस का केस है तो आपको इमेज डिस्टेंस नेगेटिव लेनी होती है. चाहो तो इसे रट लो, या फिर आप अगर कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है. इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के ऑपोजिट अगर डायरेक्शन है जब आप मूव कर रहे हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए तो आप नेगेटिव लेते हैं. अगर आप सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं वाइल मेजरिंग द डिस्टेंस तो आप पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं. तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है. बाकी आप रटना चाहें, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो आप ये रट सकते हैं कि कॉनकेव लेंस के केस में अगर आप लोगों को फोकल लेंथ गिवन है तो उसे नेगेटिव लेते हैं आप. अगर आप लोगों को इमेज डिस्टेंस गिवन है तो उसे भी नेगेटिव लेते हैं. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है तो उसे भी नेगेटिव लेते हैं. तो यहाँ पर तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है नहीं, हमें फाइंड आउट करना है, तो हम उसको कोई साइन कन्वेंशन नहीं देंगे. हम सिर्फ फोकल लेंथ को कन्वेंशन देंगे और इमेज डिस्टेंस जो गिवन है उसे कन्वेंशन देंगे. तो हमने फोकल लेंथ लिख लिया, फोकल लेंथ इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर एंड आवर इमेज डिस्टेंस इज -10 सेंटीमीटर और स्मॉल u जो है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो उसको अब सब चीजों को फॉर्मूले में पुट करते हैं. 1/v - 1/u = 1/f. 1/v में v की जगह आप लोगों को क्या लिखना है, आप लोगों को लिखना है -10 सेंटीमीटर. u तो आप लोगों को फाइंड आउट करना है. f की जगह आप लिख देंगे -15 सेंटीमीटर. तो फॉर्मूले में सारी वैल्यूज डालने के बाद में आपका जो फॉर्मूला है वो ऐसा कुछ लगेगा, 1/-10 सेंटीमीटर - 1/u = 1/-15 सेंटीमीटर. इस तरीके का आपका फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा जब आप लोग सारी वैल्यूज पुट कर देंगे. उसके बाद फर्दर सॉल्व करते हुए आप लिखेंगे 1/u = 1/-15 - 1/-10 सेंटीमीटर. उसके बाद और भी आगे सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 1/u = 1/15 - 1/10. उसके बाद आगे जब सॉल्व करोगे तो चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम 30 होगा. तो अगर 30 लाना है आप लोगों को दोनों में तो 1/15 - 1/10 है. तो 15 को 30 बनाने के लिए आप लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे. तो आपका कैसे हो जाएगा, 2/30 हो जाएगा. -1/10 की जगह 10 की जगह आपको 30 बनाना है तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को लिखना होगा पहले तो आप लोगों का 1/15 - 1/10 था ऐसे था, अब आपका हो जाएगा 2/30 - 3/30. पूरा सॉल्व कर दोगे तो आपका आ जाएगा इक्वेशन नेक्स्ट आ जाएगा 1/u = -1/30. तो इस तरीके से हो जाएगा. तो आपकी जो u की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, -30 सेंटीमीटर आ जाएगी. माइनस से आप लोगों को समझ ही में आ गया होगा कि जिस साइड इमेज बनी है उसी साइड ऑब्जेक्ट को भी रखा गया है. तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं. मैग्निफिकेशन का अगर आपको पता लगाना हो तो आप लोग क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो इमेज डिस्टेंस की जगह आप लोगों को लिख देना है -10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह आप लोगों को लिख देना है -30 सेंटीमीटर. सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1/3 जो 0.33 के आसपास होगी. तो इससे आपको पता चल रहा है कि इमेज की साइज जो है वो लेस है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट की साइज, क्योंकि 0 point something वैल्यू यानी कि 1 से लेस वैल्यू आने का मतलब है कि जो इमेज की साइज है वो छोटी है. और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको +0.33 मिल रहा है, इसका मतलब है कि वर्चुअल बनी है, जो आपकी इमेज बनी है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है. तो इस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें. उसके बाद आप लोग एग्जाम्पल 10.4 ये भी एक देख लो, उसके बाद बाकी का जो है वो आप इसको दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए. बाकी क्वेश्चन हम लोग को एक्सरसाइज में भी मिलेंगे ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो हम वो भी सॉल्व करेंगे. तो एग्जाम्पल 10.4 में आपको बोला गया है, अ 2 centimeter टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर The distance of the object from the lens is 15 cm. Find the nature, position and size of the image. Also find its magnification. यहाँ पर आपको बताई गई है height बताई गई है basically जो object की height है वो बताई गई है और बोला है कि principal axis पर ये रखी गई है और इस बार हम लोग concave lens नहीं हम लोग convex lens की बात कर रहे हैं तो convex lens की आपको focal length given है focal length जो है वो 10 cm है तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है convex lens में आप लोगों को हमेशा focal length जो है वो positive लेनी होती है तो focal length की value क्या हो जाएगी plus 10 cm हो जाएगी और जो object है क्योंकि उसको principal axis के ऊपर रखा गया है इसीलिए उसकी height जो होगी वो भी हम positive लेकर के चलेंगे जब हम magnification के formula में इसको put करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को और क्या बताया गया है आप लोगों को distance of object from the lens बताया गया है और इसकी value दी है 15 cm तो आप लोग अगर रटना चाहें तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि convex lens के केस में जो object distance आप लोगों को लेना होता है वो हमेशा negative लेना होता है इमेज डिस्टेंस की अगर वैल्यू गिवन हो तो आपको उसे पॉजिटिव लेना होता है यहाँ पर आप लोगों को इमेज डिस्टेंस की वैल्यू ही नहीं गिवन है तो आप उसे कुछ लेकर के नहीं चलेंगे लेकिन अगर कभी गिवन हो आप लोगों को कॉन्वेक्स लेंस की इमेज डिस्टेंस तो आप उसे पॉजिटिव लेकर के चलेंगे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है अगर वो गिवन हो तो उसे नेगेटिव लेकर के चलते हैं तो ये आप चाहें तो रख सकते हैं बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि कॉन्सेप्ट ये है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन आपको देखनी होती है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है ये आपको चेक करना होता है उसके बाद आपको डायरेक्शन एक और डायरेक्शन देखनी होती है वो डायरेक्शन होती है आपके मूवमेंट की कि आप किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ मूवमेंट आपकी जो है वो डायरेक्शन उसकी क्या है लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है अगर इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट आपको मूव करना पड़ता है डिस्टेंस मेजर करने के लिए तो आप उसको नेगेटिव लेंगे डिस्टेंस की वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू दे देंगे अगर सेम डायरेक्शन में आप मूवमेंट कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है उसी डायरेक्शन में आप मूवमेंट कर रहे हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए तो उस केस में आप डिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी उसको पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो ये तो कॉन्सेप्ट है अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आ रहा है तो आप रट सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसे आपको नेगेटिव लेना होता है इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना होता है अगर आप लोगों को कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है तो और आपको फोकल लेंथ की वैल्यू तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है पर फोकल लेंथ आपको प्लस 10 सेंटीमीटर लिखना है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप लोगों को कैसे लिखना है माइनस 15 सेंटीमीटर लिखना है तो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को बोला गया है कि आप बताएं कि जो इमेज बनेगी उसकी साइज क्या है पोजीशन क्या है और नेचर क्या है ये सारा आप लोगों को बताना है तो मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो फोकल लेंथ गिवन है और आप लोगों को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है तो आपको इमेज डिस्टेंस आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा क्योंकि फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/v - 1/u = 1/f तो यहाँ पर दो चीजें तो आपको पहले से गिवन है फोकल लेंथ गिवन है और आप लोगों को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है इमेज डिस्टेंस बताना है तो ये आसानी से आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा लेंस फॉर्मूले से मिल जाएगा तो आप 1/v - 1/u = 1/f में सारी वैल्यूज डाल सकते हैं और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे इमेज डिस्टेंस का तो आपको पता लगाना है तो आप लिखेंगे 1/v - 1/15 cm 15 जो है ये बेसिकली क्या है आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो आप ऐसे लिखेंगे 1/v - 1/-15 = 1/10 तो ये आप लोगों ने अपना फॉर्मूला जो है उसमें वैल्यू सारी पुट कर दी उसके बाद आगे आप लिखेंगे 1/v = 1/10 - 1/15 यहाँ पर मजे की बात यह है कि पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी की तरह यहाँ पर फिर से 15 और 10 आया है यानी कि आपको यहाँ पर फिर से एलसीएम 30 लेना है तो एलसीएम 30 लेने के बाद आप क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 1/v = 1/10 - 1/15 है तो 1/10 की जगह आपको 30 बनाना है तो आपको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आप लिखेंगे 3/30 - 1/15 है तो अगर आपको 15 का 30 बनाना है तो आपको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा 1/v = 3/30 - 2/30 फर्दर सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1/v = 1/30 तो v की जो वैल्यू आ जाएगी वो प्लस 30 सेंटीमीटर आ जाएगी तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों को कॉन्वेक्स लेंस में इमेज डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है पहले से गिवन है तो आप उसको पॉजिटिव लेकर के चलेंगे इमेज डिस्टेंस को और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लेकर के चलेंगे आपने सॉल्व करा तो आप लोगों की जो वैल्यू आ रही है इमेज डिस्टेंस की वो पॉजिटिव ही आ रही है तो आप लोगों को जब पहले से गिवन है तो आप उसे पॉजिटिव लेकर के चलेंगे और अगर नहीं गिवन है तो आप कोई साइन लेकर के नहीं चलेंगे आपको खुद ही वहां पर जो एक्चुअल साइन है उसके साथ में आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करने के बाद में आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपको करेक्ट वैल्यू मिलेगी। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को पॉजिटिव साइन की वैल्यू मिलेगी, मिली हुई है। यहाँ पर देखो कॉन्वेक्स लेंस की इमेज डिस्टेंस आप लोगों को जो मिली है ये प्लस 30 मिली है, प्लस मिल रहा है आप लोगों को पहले से। तो यहाँ पर प्लस मिलने का मतलब है कि आपको अगर पहले से गिवन होता, मान लो आप लोगों को पहले से गिवन होता इमेज डिस्टेंस, तो आपको पॉजिटिव लेना होता, और अगर पहले से गिवन नहीं है तो आपको कोई साइन नहीं लेना है, आपका खुद ही पॉजिटिव आ जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है फर्दर, आपको मैग्निफिकेशन का पता लगाना है। तो मैग्निफिकेशन में आप लोगों को वी बाई यू करना होता है। वी की जो वैल्यू है वो 30 सेंटीमीटर है, यू की जो वैल्यू है वो क्या है, वो आपकी 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर विथ नेगेटिव साइन। तो आपको कैसे लिखना है, एम मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी बाई यू विच इज इक्वल टू प्लस 30 अपॉन माइनस 15। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगी, माइनस 2 आ जाएगी वैल्यू। इसका मतलब माइनस आने का क्या मतलब है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया है इसका मतलब रियल इमेज बनी है, रियल इमेज बनी है, साथ में ऐसी इमेज है जिस जो बड़ी है, बड़े साइज की है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़े साइज की है, दुगनी साइज की है, और जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है उसके दूसरे वाले साइड में इमेज की फॉर्मेशन हुई है, और ये इन्वर्टेड है, नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू से आप लोगों को दो तीन बातें पता चलती हैं, एक तो ये कि ये रियल इमेज बनी है, दूसरी ये कि ये इन्वर्टेड है, तीसरी ये कि जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसके ऑपोजिट साइड में बनी है, ये लेंसेज के बारे में है। बाकी जो मिरर होता है उसके बारे में अलग बात हमें समझनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को पावर ऑफ अ लेंस पता लगाना है। पावर ऑफ अ लेंस का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू 1/f। एफ क्या है, फोकल लेंथ है। पी जो है, कैपिटल पी जो है यहाँ पर, ये पावर है बेसिकली। तो जो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं हमारे उसकी पावर पॉजिटिव आती है, और जो कॉनकेव लेंसेज होते हैं उसकी पावर नेगेटिव आती है। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पावर और फोकल लेंथ का इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब तो आप लोगों को समझ में आता होगा कि पावर इज इक्वल टू 1/ में एफ है, 1/ में कोई चीज़ है और रिलेटेड है वो किसी चीज़ से, तो इसको इनवर्स रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फोकल लेंथ की वैल्यू बढ़ाएंगे तो पावर की वैल्यू कम हो जाएगी। कोई भी लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस के केस में आप देख सकते हैं कि अगर आप फोकल लेंथ की वैल्यू बढ़ाएंगे तो पावर की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर आप फोकल लेंथ की वैल्यू घटाएंगे तो पावर की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर मजे की बात ये होती है कि जैसे जैसे आप अगर कॉनकेव लेंस के बारे में बात करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाती है, पावर जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप फोकल लेंथ ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, आपकी पावर की नेगेटिव वैल्यू आएगी, वो कम आएगी, कम नेगेटिव, लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव, एक लेस नेगेटिव ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मोर नेगेटिव। ये तो आपको पता होगा, -1 इज ग्रेटर देन -2, ये बात तो आपको पता होगी। तो ये सब बातों का भी आपको ध्यान में रखना है, आप जब बताएं कि किस लेंस का पावर ज़्यादा है। मान लो अगर पूछ लिया जाए आपसे तो कॉनकेव लेंस में आपको जज करना आना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस में आपको जज करना आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू के साथ में आएगा। जब कॉनकेव लेंस में बताएंगे तो नेगेटिव वैल्यू के साथ में आपको पावर बताएंगे, और कॉन्वेक्स लेंस जो होती है उसकी पावर पॉजिटिव होती है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे बाकी सारे चीज़ों की डायमेंशंस होती हैं, एसआई यूनिट्स होती है मेजर करने की, जैसे लेंथ की मेजर करने की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। सिमिलरली पावर, जो हमारे लेंस का पावर है इसको मेजर करने की भी एक एसआई यूनिट होती है जिसका नाम है डायोप्टर। डायोप्टर को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। पावर आप लोगों ने कभी देखा होगा, या तो +1D या फिर -1D लेंस का पावर ऐसे बताते हैं, तो डी जो है, कैपिटल डी जो है, वो डायोप्टर को रिप्रेजेंट करता है। पावर का पता लगाने के लिए हमेशा आप लोगों को जो फोकल लेंथ लेनी होगी वो आप लोगों को मीटर्स में लेनी होगी। मान लो अगर आप लोगों को दी है सेंटीमीटर में, तो उसे आप कन्वर्ट करें मीटर में, उसके बाद ही आप पावर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि पावर फाइंड करने के लिए आपको फोकल लेंथ को उसकी एसआई यूनिट में लेना होता है, मीटर्स में लेना होता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि 1 डायोप्टर की वैल्यू क्या होगी, तो 1 डायोप्टर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको फोकल लेंथ की वैल्यू 1 मीटर लेनी होगी, तब आप लोग डायोप्टर यानी कि पावर की वैल्यू पता लगा सकते हैं। अब जो बातें बताई गई हैं उसके आधार पर, मान लो अगर आपसे कहा जाए कि एक किसी ऑप्टिशियन ने किसी व्यक्ति को चश्मा दिया है और उस चश्मे की पावर है +2D, +2D, तो इससे आपको क्या समझ में आता है, इससे आपको तो पहली बार जो समझ में आ रही है प्लस है, इसका मतलब है कि कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है, और 2D जो है वो उसकी पावर है। और दूसरी अगर आपसे पूछी जाए कि मान लो कोई लेंस है जिसकी पावर है -2.5D, तो इससे आपको क्या समझ में आता है, इससे आपको ये समझ में आता है कि जो लेंस है वो एक कॉनकेव लेंस है विथ पावर इक्वल टू 2.5। नेगेटिव वैल्यू से तो हमें बस ये समझ में आ जाता है कि कौन सी लेंस यूज की गई है। और अगर आप लोगों को पावर की वैल्यू बताई गई है तो पावर इज इक्वल टू 1/f के फॉर्मूले में डाल करके आप लोग फोकल लेंथ का जो वैल्यू है वो भी पता लगा सकते हैं। उसके बाद आगे देखो, आप लोगों को अगर मान लो बहुत सारे लेंसेज रखे हैं और उनकी कुछ कुछ पावर की वैल्यूज हैं, तो अगर बहुत से लेंसेज रखे हैं और उनकी कुछ कुछ अलग अलग पावर की वैल्यूज हैं, तो पास पास रखे हैं, अगर वो चिपका चिपका के रखे हुए, टच करा करा के रखे, तो ऐसे में वो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं और उनका कंबाइंड इफेक्ट पड़ता है। मान लो आप लोग कभी अपना आँख टेस्ट कराने कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होते हैं आँख टेस्ट करने के लिए हमारे आँख के आगे एक फ्रेम रखते हैं, टेस्टिंग फ्रेम रखते हैं, टेस्टिंग स्पेक्टिकल्स का फ्रेम रखते हैं, और उसमें अगर जितनी आँख खराब है उतनी वो लेंसेज हमारे आँख के आगे रखते जाते हैं और कलेक्ट करते जाते हैं कि कितने लेंसेज उन्होंने रखे हैं। उन सभी लेंसेज का उनको पावर पता रहता है। उसके बाद जितने भी लेंस लगा करके हमें लग रहा है कि हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, उतने लेंसेज का वो पावर जो है, इंडिविजुअल पावर, उसको ऐड कर देते हैं और उसके बाद हमें प्रिस्क्राइब करते हैं एक लेंस जिसकी पावर की वैल्यू उतनी होगी जितनी उन सभी पावर्स को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई है। सपोज करो कि दो लेंस लगाए गए हैं, दो लेंस का कॉम्बिनेशन लगा, एक लेंस की वैल्यू पावर की थी 2+2 डायोप्टर और दूसरे लेंस की पावर की वैल्यू थी +0.25 डायोप्टर। इन दो लेंसेज को लगा करके हमें क्लियर दिखाई देने लगा, तो उसके बाद जो हमें लेंस प्रिस्क्राइब किया जाएगा चश्मे में लगाने के लिए, उसके लिए हमें कहा जाएगा कि हमें +2.25 डायोप्टर का जो चश्मा है वो बनवाना है। तो इस तरीके से बेसिकली पावर जो है लेंसेज की वो ऐड हो जाती है और जितने जितने लेंसेज लगाए जा रहे हैं उतने उन सभी लेंसेज के पावर्स जो है उनका एडिशन होते जाता है और उसका कंबाइंड इफेक्ट पड़ता है आंखों पर, या फिर कंबाइंड इफेक्ट पड़ता है बेसिकली इमेज फॉर्मेशन कराने के लिए। तो इस तरीके से आपको देखना है, लेंस सिस्टम जब बनाया जाता है तो उसमें जितनी लेंसेज लगाई गई हैं उन सभी का इंडिविजुअल पावर ऐड हो जाता है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन। मान लो अगर बीच में कभी ऐसा लगाया है कॉन्वेक्स लेंसेज लगाए हैं कुछ और बीच में एक कॉनकेव लेंस लगाया है, तो कॉनकेव लेंस का जो पावर होगा वो तो नेगेटिव वैल्यू का होता है तो वो सब्ट्रैक्ट होएगा। तो इस तरीके से जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वो अप्लाई कर सकते हैं हम लोग पावर का पता लगाने के लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में से अगर पावर का पता लगाना है तो हम सिंपल सब्ट्रैक्शन एडिशन करके पता लगा सकते हैं। इस तरीके से जो लेंसेज हैं इनका कॉम्बिनेशन जो है ये हम लोगों को माइक्रोस्कोप में देखने को मिलता है, टेलीस्कोप में भी देखने को मिलता है, मल्टीपल जो लेंसेज है इनको यूज किया जाता है, कैमराज में भी हम इस तरीके का डिजाइन देखो मिलता है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पर पेज नंबर 184 में 3 क्वेश्चन है, उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, वो सारा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आपने जो आज पढ़ा है उसे आप रिवाइज कर लें, आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो आप अपने टीचर से जरूर पूछे। नेक्स्ट क्लास में आइए, हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, चैप्टर को फिनिश करते हैं ताकि आप पूरे चैप्टर का रिविजन कर सके। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चंस का डिस्कशन करने के लिए। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।